आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वैभवी है और आज हम सब एक्टिविटी 3 और एक्टिविटी 4 करेंगे द इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कंप्यूटर की। हमने लास्ट चैप्टर में बचे हुए क्वेश्चंस करे थे और हमने देखा था कि क्वेश्चन आंसर्स जो थे वो चैप्टर के अंदर ही हमें मिल गए सारे। एक्टिविटी 3 और एक्टिविटी 4 मोस्टली ग्रामर है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम योर टेक्स्ट। तो स्टेटमेंट है, हु हैज बीन इलेक्टेड द सेक्रेटरी ऑफ द क्लब। क्वेश्चन टू, हु वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर मेड। पहला कंप्यूटर किसने बनाया, हु मेड द फर्स्ट कंप्यूटर। ठीक है, थर्ड, द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज मेड बाय हरमन हॉलेरिथ। तो पहला कंप्यूटर हरमन हॉलेरिथ ने बनाया। तो देखो, अब हमें इन तीनों स्टेटमेंट्स में कुछ यू नो कॉमन देखना है। तो क्या है वो कॉमन, तो नीचे लिखा है दीज स्टेटमेंट्स आर सेट टू बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस। तो बच्चों, आपने अगर पैसिव और एक्टिव वॉइस नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, ये पैसिव वॉइस में लिखा है। पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि आपको बेसिकली सोर्स ना बताना, ठीक है, आपको उस एक्शन का सोर्स ना बताना। ठीक है, अगर आपको कोई वर्ब बताई गई है तो उस वर्ब की हमें सोर्स नहीं पता होती। जो वर्ब होता है वो एक्शन जो होता है वो सिंपली स्टेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्टिव वॉइस में हम प्रॉपरली बताते हैं कोई चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आई रोट माई एसे। ठीक है, मैंने अपना एसे किया। और पैसिव वॉइस में हम यूजुअली थर्ड पर्सन का यूज करके बताते हैं, जैसे द एसे वॉज रिटन बाय अ स्टूडेंट। तो आई की जगह मैंने अपना एक अलग ऑब्जेक्टिव यूज किया, स्टूडेंट यूज किया। ठीक है, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, द एसे वॉज रिटन, एक एसे लिखा गया। हु रोड थे सब, हमें नहीं पता, कोई सोर्स नहीं है। तो एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा, द एसे वॉज रिटन बाय द स्टूडेंट। ठीक है, पूरा का पूरा हमें सोर्स पता चल गया। एक्टिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट, ये एक्टिव वॉइस और अपना पैसिव वॉइस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सीखने में। हम क्वेश्चन आंसर जब करेंगे तब हमें शायद समझ में आ जाए। तो पहला एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड हेल्प्ड मी, मेरे फ्रेंड ने मुझे हेल्प किया। ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट स्टेट कर दिया। सेकेंड इज, आई वॉज हेल्प्ड बाय माई फ्रेंड, कि मेरी मदद की गई मेरे दोस्त के थ्रू। समझ आ रहे हो कि थोड़ा उल्टा कर दिया हमने, थोड़ा सा उल्टा हो गया। आई वॉज हेल्प्ड बाय माई फ्रेंड, एक पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल हमने यूज करा और दूसरे स्टेटमेंट में हमने थोड़ा उल्टा कर दिया। तो देखो यहाँ पे लिखा है, पैसिव कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू मेक द लैंग्वेज मोर इम्पर्सनल एंड फॉर्मल। तो देखो, पहला जो स्टेटमेंट है माई फ्रेंड हेल्प मी, बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, बिल्कुल इनफॉर्मल है, ऐसे ही बोल रखा है हमने पर्सनल वे में कि माई फ्रेंड हेल्प मी। और दूसरा जो स्टेटमेंट है उसमें ऐसा लगेगा कि दम दिया गया है बात में, बात थोड़ी सी मतलब सीरियस सी बात है ना। आई वॉज हेल्प बाय माई फ्रेंड, तो मतलब कोई मतलब ऑफिशियल सी बात लग रही है। तो ये होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, थोड़े पर्सनल होते हैं, इनफॉर्मल तरीके से यूज कर सकते हैं। पैसिव वॉइस कब यूज करते हैं, जब हमें किसी से मतलब रिस्पेक्टफुली बात करनी होती है। आई वॉज स्टडीड देयर, इंस्टेड ऑफ सेइंग जामिया इज माई कॉलेज, आई वुड से कि मेरा जो मैं जामिया में पढ़ती हूँ। सिंपल मतलब उल्टा बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल समझ रहे हो आप, मैं बिल्कुल दम देके बोल रही हूँ इस बात पे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैसिव एफर्मेटिव इज ऑब्जेक्टिव प्लस ऑक्सिलरी प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस डोर डी ओ और डज। समझ आया? तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है। पहले ऑब्जेक्ट यूज होगा, समझ आया, फिर ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा, फिर बाय यूज होगा, या फिर डू और डस के साथ हम बाय यूज कर लेंगे। ठीक है, बाय माय फ्रेंड जैसे हुआ, समझ आया, बाय माय फ्रेंड। तो आई क्या है, आई एक ऑब्जेक्ट था ठीक है, जिसकी हेल्प की गई, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया वास, ठीक है, आई वाज, देन पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल हो गया हेल्प्ड, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म इज हेल्प्ड, हेल्प, हेल्प का थर्ड फॉर्म इज हेल्प्ड, और बाय माय फ्रेंड जो बेसिकली सब्जेक्ट था वो एंड में आ गया। नाउ सेकेंड देखते हैं, एवरीबडी प्रेज्ड सीमा फॉर हर गुड परफॉर्मेंस, तो सही आंसर हो जाएगा सीमा वाज प्रेज्ड फॉर हर गुड परफॉर्मेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो था वो बन गया हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, और ऐसे करके हमने सेंटेंस बना लिया। नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। पहला है चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, ठीक है, बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद होती है, तो सही जवाब होगा आइसक्रीम इज लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, समझ आया, आइसक्रीम क्या हो गया, आइसक्रीम, आइसक्रीम हो गया ऑब्जेक्ट, देन इस क्या हो गया, इस हो गया हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल हो गया लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, ठीक है, जो हमारा मेन सब्जेक्ट था वो एंड में आ गया चिल्ड्रन। सेकेंड, शी लर्न्स अ फ्यू वर्ड्स एवरी डे, शी लर्न्स अ फ्यू वर्ड्स एवरी डे, वो कुछ वर्ड्स रोज सीखती है, ठीक है, तो क्या होगा, अ फ्यू वर्ड्स जो ऑब्जेक्ट है वो हमने सबसे आगे लेंगे, ठीक है, अ फ्यू वर्ड्स आर लर्न्ड, लर्न्ड, लर्न्स नहीं होगा, लर्न्ड, लर्न्ड क्या, लर्न्ड क्या हो जाएगा, लर्न्ड हो जाएगा लर्न का थर्ड फॉर्म, वर्ब में लर्न का थर्ड फॉर्म इज लर्न्ड एवरी डे बाई हर, ठीक है, अ फ्यू वर्ड्स आर लर्न्ड एवरी डे बाई हर, अ फ्यू वर्ड्स आर लर्न्ड एवरी डे बाई हर। क्वेश्चन नंबर थ्री, मिस्टर शर्मा टीचर्स अस इंग्लिश, मिस्टर शर्मा हमको अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी आएगा पहले, अस की जगह वी आ जाएगा, राइट, वी आर टॉट इंग्लिश बाई मिस्टर शर्मा, वी आर टॉट इंग्लिश बाई मिस्टर शर्मा, ठीक है। थर्ड अपना फिर अगला हो जाएगा, अंजना ब्रोक दिस ब्यूटिफुल कप, अंजना ने ये सुंदर कप तोड़ दिया, तो सही जवाब हो जाएगा दिस ब्यूटिफुल कप वॉज ब्रोकन बाय अंजना, दिस ब्यूटिफुल कप वॉज ब्रोकन बाय अंजना। फिफ्थ इज अरुणा हेल्प्स पुअर चिल्ड्रन, अरुणा गरीब बच्चों की मदद करती है, तो क्या हो जाएगा, पुअर चिल्ड्रन आगे आएगा, पुअर चिल्ड्रन आर हेल्प्ड बाय अरुणा, ठीक है, पुअर चिल्ड्रन जो जिसकी हेल्प की गई है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो आगे आ जाएगा, ठीक है, पुअर चिल्ड्रन आर हेल्प्ड बाय अरुणा। फिर थर्ड इज अंशुला इनकरेजेस दी स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है, द स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड बाय अनुष्का, ठीक है, द स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड बाय अनुष्का, ठीक है। सेवेंथ, मिस्टर गुप्ता प्रेजेस हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, तो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स क्या है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, ठीक है, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स पहले आ जाएगा, आर प्रेज्ड बाय मिस्टर गुप्ता, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर जो एक ऑक्सिलरी वर्ब है, आर प्रेज्ड, प्रेज का थर्ड फॉर्म इज प्रेज्ड बाय मिस्टर गुप्ता। आई एम श्योर ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो अभी एक थोड़ी एक्सरसाइजेस और है, Here are some more exercises for changing into passive voice. तो example है, ये सारे के सारे आप sentences आप देखो interrogative sentences है, question mark आए हैं, तो इनका थोड़ा सा क्या, इनका भी वही same हमने जो formula use करा, object plus के बाद auxiliary verb, फिर अपना past tense, ठीक है, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट एंड में आना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज है, डू पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो क्या इसका कर दिया, इज इंग्लिश स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वही चीज उल्टी कर दी हमने, ठीक है, उल्टा कर दिया हमने बिल्कुल सेंटेंस। तो देखो पहला सेंटेंस है, डज योर ग्रैंड मदर रीड द रामायण एवरी डे, तो यहाँ इज द रामायण हो जाएगा, ठीक है, इज, ठीक है, इज लग जाएगा, इज द रामायण रेड बाय योर ग्रैंड मदर एवरी डे। अब आप देखोगे रेड की जगह मैंने रीडेड या रिडन नहीं कहा, तो मैं आपको बताऊं, ये चीज अपने दिमाग में रखना, रीड जो होता है ना, रीड का जो सेकेंड फॉर्म होता है और जो थर्ड फॉर्म होता है वो रीड ही होता है, ठीक है, रीड का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म वर्ब में रीड ही होता है, ठीक है, रीडन या रीडेड नहीं होता है, सिर्फ रीड होता है, ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल वर्ड में से एक है रीड। तो अगर मैं पास्ट के लिए बोलूंगी आई रेड दिस बुक, मैंने ये रीड बुक, मैंने ये बुक पढ़ी है, आई रीड दिस बुक, मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, या फिर, ठीक है, तो दोनों सेम चीज है इंग्लिश में, ठीक है, रीड का पास्ट में रीडेड या रीडिंग नहीं होगा, रीड ही होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, इज द रामायण रीड बाय योर ग्रैंड मदर एवरी डे, इज द रामायण रेड, ठीक है, प्रोनंसिएशन डिफरेंस है, रीड की जगह मैंने बोला रेड, पर स्पेलिंग सेम है, ठीक है, पास्ट में हम रीड को रेड पढ़ते हैं पर स्पेलिंग सेम होती है, इज द रामायण रेड बाय योर ग्रैंड मदर एवरी डे, ओके। सेकेंड, Has man conquered the space? तो क्या हो जाएगा, Has the space been conquered by men? ठीक है, Has the space been conquered by men? ठीक है, थर्ड इज, Did Sushma grow roses in her garden? तो सही जवाब हो जाएगा, Were roses grown by Sushma in her garden? फिर है, Will Hema write a letter to her sister? Will a letter be written by Hema to her sister? ठीक है, सही आंसर is, will a letter be written by Hema to her sister? Then fifth, were the villagers digging a wall? Were a villagers digging a wall? तो सही जवाब हो जाएगा, was a well being digged by villagers? Will the villagers digging a well? क्या villagers ये well जो कुआं होता है वो dig करेंगे? तो हमने क्या करा? Was a well being dug by villagers? क्या well जो है वो खुद गया है? ये हमने passive voice में इसको change करा, was, ठीक है? Sixth, can you solve this problem? तो क्या हो जाएगा answer? Can this problem be solved by you? ठीक है? Can this problem be solved by you? क्या ये प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो सकती है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस का यूज थोड़ा मुश्किल है, बट जो मैंने आंसर्स आपको बताए आप उसके हिसाब से देख सकते हो कि जैसे बी का मैंने यूज करा, ठीक है, बी की मैंने यूज करा, और आगे की जगह मैंने जैसे इज द रामायण रीड बाय योर ग्रैंड मदर एवरी डे लिखा, तो मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि डस के साथ इज ज्यादा सही रहता है, ठीक है, डस के साथ हम इज को इंटेरोगेशन में लाते हैं, फिर हैज है, जैसे हैज मैन कॉन्कर्ड द वॉल, तो हैज को क्वेश्चन की तरह हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, हैज सेम रखा हमने, फिर डिड सुषमा ग्रू रोजेज इन हर गार्डन, तो डिड की जगह हमने क्या किया, वर यूज कर लिया, तो क्या होता है ना, हम इनकी जगह ये चीजें भी सेम रख सकते हैं, जैसे डिड, जैसे अगर मैं बोलना चाहूं कि डिड रोजेज grown by Sushma in her garden, तो statement सही है, but मैंने different answer आपको बताया, तो आप ना ये जो आगे answers, जो आगे question marks में आपको दिए हुए हैं, जैसे does, has, did, will, were, can, तो ये same भी रह सकते हैं, आगे का statement भी आप change कर सकते हो, ठीक है, इनको चेंज ना करना ना करने से passive voice में कोई फर्क नहीं आता है। passive voice का main चीज होता है, जैसे हम पहले यूजुअली सिंपल सेंटेंस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट पहले लाते हैं और ऑब्जेक्ट एंड में लाते हैं, ठीक है, जैसे आई, मतलब मैं एक सब्जेक्ट हूँ, आई हैव डन दिस एसे, तो एसे क्या है, ऑब्जेक्ट है, पर अगर मुझे पैसिव में बोलना है तो मैं क्या बोलूंगी, द एसे इज कंप्लीटेड बाय मी, राइट, द कंप्लीटेड बाय मी, मैंने कंप्लीट करा है, ठीक है, तो ऐसे हम कंप्लीटेड करा है. जैसे मैं आपको सेम सेंटेंस का भी एग्जांपल देती हूँ. आई हैव कंप्लीटेड दिस एसे. ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड दिस एसे. मैंने ये अपना एसे कंप्लीटेड कर रखा है, कंप्लीट कर रखा है. ठीक है, नहीं तो आई हैव डन दिस एसे. सिंपल ये चीज है. अगर मुझे इसे पैसिव वॉइस में लिखना है तो मैं लिखूंगी द एसे इज डन बाय मी. ठीक है, द एसे इज डन बाय मी. अगर मैंने प्रेजेंट टेंस में लिखा होता दैट आई हैव कंप्लीट दिस एसे. ठीक है, आई हैव कंप्लीट दिस एसे, तो हम पास्ट में ले आते इसको कि जैसे द एसे इज कंप्लीटेड बाय मी. ठीक है, तो जब पास्ट टेंस सेम होता है, जब पास्ट ऑलरेडी आपको दिया हुआ है तो वो सेम रहता है पैसिव में भी. अगर पास्ट टेंस आपको एक्टिव वॉइस में नहीं दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस में हम उसे पास्ट टेंस में लिखते हैं. ठीक है, ये दो तीन चीजें हैं आपको याद रहेंगी. अगर आपको समझ नहीं आए तो क्वेश्चंस के जो आंसर्स आपको बताए गए हैं आप उन्हें एक बार फिर से देखिए, आपको समझ आ जाना चाहिए. अब एक्टिविटी फोर्थ पर आते हैं. इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज एंड इट हैज इट्स ओन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द आइडियाज कॉन्सेप्ट्स. समटाइम्स इंडिविजुअली वी नो व्हाट अ वर्ड मीन बट इन ग्रुप इट इज समवट डिफरेंट. रीड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विद देयर मीनिंग्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच एक्सप्रेशंस. आफ्टर गेटिंग द मीनिंग यूज देम इन योर ओन सेंटेंस टू ब्रिंग आउट द मीनिंग क्लियरली. First, get in touch with to meet contact. Keep track of, keep a record of whether sales are good or bad. Third, find fault with to criticize, to find a fault or weakness in something or somebody. Feel your age, to realize that you are getting an age. तो जैसे पहला sentence हम देखें, पहला जो phrase है, get in touch with, to meet, to contact. अगर हमें इसे इन सब के जो meaning है, वो same है, ठीक है? Get in touch with, to meet, to contact, इनके meaning बिल्कुल same है. पर अगर different different हमने phrases use करे, अब मैं आपको sentence से बताती हूँ. I get in touch with my teacher. I have to get in touch with my teacher. ठीक है, मुझे मेरे teacher से मिलना पड़ेगा. मैं ये भी बोल सकती हूँ I have to meet my teacher. I have to meet my teacher. नहीं तो मैं ये भी बोल सकती हूँ I have to contact my teacher. तीनों सेंटेंस जो मैंने बोले इनके मीनिंग बिल्कुल सेम है कि मुझे मेरे टीचर से मिलना है, पर मैंने तीनों फेजेस डिफरेंट यूज करे. ठीक है, मीनिंग बिल्कुल सेम है. गेट इन टच विद मतलब मीनिंग मिलना, मीनिंग टू मीट मीन्स तो मिलना होता ही है. टू कॉन्टेक्ट विद मीन्स होता है किसी को कॉन्टेक्ट में लाना, किसी से बात करना. तो ओवरऑल मीनिंग सेम है. सेकेंड है कीप ट्रैक ऑफ, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ वेदर सेल्स आर गुड और बैड. सेकेंड का मतलब होता है कि आपको चीजों का ध्यान रखना. जैसे अगर मैं बोलूं आई हैव टू कीप ट्रैक ऑफ माई बैंक अकाउंट, मुझे मेरे बैंक अकाउंट में नजर रखनी चाहिए. ठीक है, और या नहीं तो मैं ये भी बोल सकती हूँ आई हैव टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ वेदर माई बैंक अकाउंट इज गुड और नॉट. ठीक है, तो कीप ट्रैक ऑफ सेल्स में अगर मैं बोलूं कि अगर सेल्स के थ्रू अगर मुझे कुछ बिजनेस करना है, सेल करनी है, तो मैं इसको ऐसे यूज कर सकती हूँ आई हैव टू कीप ट्रैक ऑन, आई हैव टू कीप ट्रैक ऑफ माई शॉप. ठीक है, आई हैव टू कीप ट्रैक ऑफ माई शॉप, मुझे मेरी दुकान पे नजर रखनी है. तो सेकेंड होगा, सेकेंड में ये भी यूज करती हूँ आई हैव टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ वेदर माई शॉप सेल्स आर गुड और बैड. ठीक है, तो दोनों को मैं दोनों सेंटेंसेस के मतलब सेम है, पर हम मैंने दोनों अलग अलग तरीके से यूज करे. थर्ड, फाइंड फॉल्ट विद, टू क्रिटिसाइज, टू गेट अ फॉल्ट और वीकनेस इन समथिंग और समबडी. अब किसी में गलती निकालना, ठीक है, किसी में गलती निकालना, तो उसका मतलब ये भी हो सकता है टू क्रिटिसाइज या टू फाइंड अ फॉल्ट और वीकनेस इन समथिंग और समबडी. तो अगर मैं इसको सेंटेंस में यूज करूं तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ आई हैव टू क्रिटिसाइज फिल्म फेयर अवार्ड्स. ठीक है, मुझे फिल्म फेयर अवार्ड्स क्रिटिसाइज करने चाहिए. ठीक है, नहीं तो मैं ये भी बोल सकती हूँ आई हैव टू फाइंड ए फॉल्ट इन फिल्म फेयर अवार्ड्स या आई हैव टू फाइंड ए वीकनेस इन फिल्म फेयर अवार्ड्स. तीनों सेंटेंसेस के मतलब क्या है? मतलब यह कि मुझे फिल्म फेयर अवार्ड्स में गलतियां निकालनी है. ठीक है, तो मैंने ये सेंटेंसेस बनाए, जैसे ये और सेंटेंस में बताऊं, शी क्रिटिसाइजेस मी, उसने मुझे क्रिटिसाइज किया, उसमें उसने मुझ में गलतियां निकाली, ठीक है। नहीं तो अगर सिंपल हमें बताना है, शी फाउंड मिस्टेक्स और फॉल्ट इन मी, ठीक है, तो मीनिंग बिल्कुल सेम है, गलतियां निकालना मतलब है, बट मैंने वर्ड्स अलग अलग यूज करे, एक वर्ड यूज करा क्रिटिसाइज और एक प्लेनली मैंने बोल दिया, ठीक है। फोर्थ, फील योर एज, अपनी एज रियलाइज करना, टू रियलाइज व्हाट दैट यू आर गेटिंग ओल्ड। तो जैसे फील योर एज, जैसे आई फेल्ट माई एज, आई फेल्ट माई एज दैट आई एम नॉट एबल टू डू दिस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, फील योर एज, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, अपनी उम्र का लिहाज करो, ठीक है। तो बहुत ये इसका मीनिंग है, ये मैंने सेंटेंस के थ्रू आपको बताया कि फील योर एज का मतलब होता है अपनी एज का रियलाइज करना, अपनी एज रियलाइज करना कि आप बुढ़े हो रहे हो या जवान हो। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, फील योर एज, लेट्स पार्टी, अपनी एज देखो, हमें पार्टी की उम्र है हमारी, समझ आ रहा है। तो फील योर एज का मतलब होता है अपनी एज रियलाइज करना। नाउ एक्टिविटी फिफ्थ, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ साइंस क्लब ऑफ योर स्कूल, राइट अ लेटर टू मिस्टर गुप्ता, एन एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ योर एरिया, रिक्वेस्टिंग हिम टू इनॉग्रेट द साइंस क्लब एंड टू गिव अ टॉक ऑन कंप्यूटर्स, यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज, ठीक है। तो ये आपको क्लूज दिए गए हैं, डियर सर यू डैश प्लीज टू नो डैश साइंस क्लब डैश प्रपोज डैश इंक्रीज द नॉलेज डैश डेवलप डैश साइंटिफिक एटीट्यूड रिक्वेस्ट इनॉग्रेट। तो आप एक सेक्रेटरी हो अपने कॉलेज के या स्कूल के, और आपको मिस्टर गुप्ता जो एक एमिनेंट साइंटिस्ट है आपके एरिया के, उनको बुलाना है अपने साइंस क्लब के उद्घाटन में। तो ये आपको एक बेसिकली मॉडल दे रखा है, आपको इसके बेसिस पे अपना एक लेटर लिखना है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, डियर सर यू मे बी प्लीज टू नो दैट आर साइंस क्लब हैज हैड प्रपोज टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड डॉट वी रिक्वेस्ट यू टू कम, ठीक है, इन आर इनाग्रेशन, आर एड्रेस इज दिस, स्पीक ऑन कंप्यूटर्स एंड वी होप दैट यू एक्सेप्टेड। तो ये जो आपको वर्ड्स दिए हैं, आप इनके बेसिस पे अपना एक लेटर लिखोगे। ये आप अपने आप खुद करिए, ये आसान चीज है, आपको ऑलरेडी एक बेसिकली मॉडल दे रखा है, आपको एक सिस्टम दे रखा है, एक ढांचा दे रखा है, आपको सिर्फ अपने वर्ड्स घुसा के इसमें आंसर लिखना है। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू सो मच।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।